नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि अपने श्रोताओं को बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और इन तमाम खेल गतिविधियों पर, खेल समाचारों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार पीटीआई की मोना पार्थ सारथी को। मोना नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
शुक्रिया, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
मोना, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे हम करेंगे चर्चा विस्तार से। तो हेडलाइंस हैं, ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए खेली जा रही T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में भारत और चीन के बीच मैच शुरू हो गया है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, शुभांकर, गान, जर्सी और मशाल का अनावरण किया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जो टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है, उसके बारे में। पांच मैचों की श्रृंखला का ये तीसरा मैच और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। एलेक्स कैरी 45 और मिशेल स्टार्क 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। ट्रेविस हेड ने श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक लगाया। पेश है एक रिपोर्ट।
मैच का दूसरा दिन पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। उनकी तरफ से 2 शतक लगे। ट्रेविस हेड ने ब्रिस्बेन में पिछले मैच में 140 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक और बेहतरीन शतक लगाया। हेड ने 160 गेंद में 152 रन की अपनी तेज तर्रार पारी में 18 चौके लगाए। उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ चौथे विकेट के लिए 303 गेंदों में 241 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मैच का दूसरा दिन पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। उनकी तरफ से 2 शतक लगे। ट्रेविस हेड ने ब्रिस्बेन में पिछले मैच में 140 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक और बेहतरीन शतक लगाया। हेड ने 160 गेंद में 152 रन की अपनी तेज तर्रार पारी में 18 चौके लगाए। उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ चौथे विकेट के लिए 303 गेंदों में 241 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। स्मिथ ने संयम के साथ खेलते हुए 190 गेंदों पर 101 रन में 12 चौके लगाए। दूसरे दिन स्टंप्स तक एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनके साथ मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। कप्तान पैट कमिंग्स 20 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कैरी और कमिंग्स ने 7वें विकेट के लिए 58 रन की बेहतरीन साझेदारी कर डाली। बुमराह ने आखिरी सत्र में नई गेंद के साथ 4 विकेट लेकर भारत की वापसी की कोशिश कराई। बुमराह ने 72 रन पर 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। भारत की तरफ से आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
तीसरे मैच का पहला दिन कल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। केवल 13 ओवर का मैच हुआ था, 28 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के, और आज आगे खेलना शुरू किया। तो शुरुआत में जो 3 विकेट झटके भारतीय टीम ने, तो लगा था कि भारतीय टीम वापसी कर रही है, लेकिन एक फिर बड़ी साझेदारी और ट्रेविस हेड जो है उन्होंने हेडेक दे दी, बना दिया है भारतीय टीम के लिए।
बिल्कुल, ट्रेविस हेड जो है वो हेडेक बने हुए हैं भारतीय टीम के लिए। एडिलेड में जो पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद उस सिलसिले को यहाँ उन्होंने जारी रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी श्रृंखला का ये तीसरा मैच है और स्टीव स्मिथ फॉर्म में लौट आए हैं, और हम जानते हैं कि अगर वो फॉर्म में होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ भारत के लिए थोड़ा सा आज का दिन निराशाजनक रहा, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग यह है कि जसप्रीत बुमराह ने अपना फॉर्म बरकरार रखा है,
5
विकेट लिए हैं। अगर दूसरे छोर से उन्हें उस तरह से साथ मिलता तो शायद भारत की स्थिति मजबूत हो सकती थी। और काफी महत्वपूर्ण है ये गाबा टेस्ट, ये वही मैदान है जहां पिछली बार हमने वापसी की थी एडिलेड की हार के बाद, तो यहां भारत के बल्लेबाजों पर बहुत दारोमदार होगा।
जी बिल्कुल, और भारत के बल्लेबाजों के ऊपर हम बात करेंगे बाद में, पहले भारत के गेंदबाजों के बारे में बात करें। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, और बाद में जब ये जोड़ी टूटी स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की, तो लगा कि भारतीय टीम वापसी कर रही है, लेकिन हैं एलेक्स कैरियर, कम्यूस ने बता दिया कि जो वापसी की आप उम्मीदें रखें उसके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है।
बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी की गहराई यहाँ पता चली इस चीज से कि कैरी हमेशा विश्वसनीय बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक छोर से अच्छी गेंदबाजी से काम चलने वाला है नहीं, टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच ही असली टेस्ट होता है, तो यहाँ बुमराह को दूसरे छोर से उतना साथ नहीं मिल पाया और ये थोड़ी सी कमजोर कड़ी भारत की लग रही है, यहाँ कसना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, और भारत के बल्लेबाजों की बात करें और इस सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाजों की अभी तक रही है तो 400 प्लस का स्कोर तो बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी भारत के लिए। हालांकि अभी कैरी अभी क्रीज पर है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो रन संख्या है वो और बड़ी हो सकती है।
देखिए, अभी कल भी सुबह भारत की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से ऑस्ट्रेलियन पारी को खत्म कर दे, उधर बारिश का भी कुछ कयास है, तो भारतीय बल्लेबाजों को ऑन एंड ऑफ जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक मैच अच्छा खेलते हैं फिर नहीं खेल पाते हैं, तो वो उससे उबरना होगा और किसी एक को पारी के सूत्रधार की भूमिका यहाँ निभानी होगी।
जी बिल्कुल, और उधर क्वालालंपुर में महिला जूनियर एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए के पहले मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर मात्र 67 रन ही बना सकी। भारत के लिए सोनम यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 68 रन बनाकर जीत दर्ज की। विकेटकीपर जी कमिलिनी ने 30 गेंद में नाबाद 44 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मैच मंगलवार को नेपाल से होगा। एक अन्य मैच में ग्रुप बी में श्रीलंका ने मेजबान मलेशिया को 94 रन से पराजित किया है। महिला क्रिकेट टीम की बात करें, जूनियर की बात थी, अब सीधा चलते हैं सीनियर टीम जो इस समय नई मुंबई में के DY पाटिल स्टेडियम में सामना कर रही है वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम का। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला है और तीनों मैच DY पाटिल स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। आज पहला मैच टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए थे। जेमिमा रोड्रिगेज 72 रन बनाकर क्रीज पर थी और कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी आई हैं, उनका साथ देने 9 रन बनाकर वो क्रीज पर हैं। और उसके अलावा 54 रन की पारी खेली है स्मृति मंधाना ने, उमा छेत्री 24 रन बनाकर आउट हुई है। अब भारतीय टीम की बात करें तो उन्होंने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली थी T20 की, जिसमें वो हारी थी 2-1 से, और बाद में बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को 5-0 से हराया था। तो पूरे वर्ष में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस और उतार चढ़ाव पर आपकी टिप्पणी।
जी देखिए, T20 श्रृंखला जनवरी में खेली गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने हराया था भारत को, उसके बाद बांग्लादेश में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 2 वनडे श्रृंखलाएं भी खेली और अभी हाल ही में लगभग वही कोर टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच वनडे मैच हार कर आई है। बुधवार को ही टीम लौटी है और आज पहला मैच खेलना है, तो बहुत कम समय मिला है रीग्रुप होने का और यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शेफाली वर्मा फिर से टीम में नहीं है, उमा छेत्री ने आज पारी का आगाज किया है और ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। यहाँ भारत की कोशिश यही होगी कि चूंकि अगले साल विश्व कप होना है और एक अच्छी जीत, एक अच्छी श्रृंखला जीत की बहुत भारत को बहुत जरूरत है और वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया रिकॉर्ड भारत का अच्छा ही रहा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मिली हार को भुलाकर भारतीय टीम जीत के साथ यहां घरेलू सत्र का आगाज करे।
उधर मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए खेली जा रही T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बेंगलुरु में फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया। 175 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 48 रन की पारी खेली। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर मध्य प्रदेश की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए थे। कप्तान रजत पाटीदार ने नाबाद 81 रन की पारी खेली। मुंबई की टीम ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। और बहरहाल हम चलते हैं सीधा मुंबई, जहां पर इस समय जो मैच का स्कोर है 20वां ओवर, उसके अंतिम गेंद फेंकी जा रही है। 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का ये स्कोर है और 195 रन बनाए हैं भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद। वेस्टइंडीज को दिया है 196 रन का लक्ष्य। मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत और चीन के बीच मैच शुरू हो गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने जापान को 3-1 से हराया था और दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित किया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, शुभांकर, गान, जर्सी और मशाल का अनावरण किया।
उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के महायज्ञ में प्रथम आहुति के रूप में शुभंकर एंथम, लोगो, टैगलाइन और जर्सी का अनावरण कर रहे हैं। आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है।
कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को खेलों में महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि खेलों को और बेहतर बनाने के लिए सरकार खेल नीति में लगातार सुधार कर रही है।
राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से हमारा लक्ष्य हमारे युवा एथलीटों को आगे बढ़ाना है, उनकी प्रतिभा को निखारने और भारत को गौरव के पल देने का एक मंच प्रदान करना है। हम 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए हम हमारे खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि सरकार भारत में ओलंपिक आयोजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्य सरकारों को देश में खेलों का बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने होंगे और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए केंद्र उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद देगा। 38वें राष्ट्रीय खेल अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होगा। भारत में अगले वर्ष 13 से 19 जनवरी तक होने वाले खो खो विश्व कप में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील ने हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें कुल 24 देशों के 615 खिलाड़ी और 125 सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी, एक कोच, एक मैनेजर और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी होंगे। भारतीय खो खो महासंघ और टूर्नामेंट की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि खो खो को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारी माटी का खेल विश्व में फैल जाए, ये एक स्वप्न था जो अब साकार होता दिख रहा है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 2032 के ओलंपिक्स में खो खो इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है। पैसे लगते नहीं थे, कहीं भी खेल लो, इस वजह से हर एक ने खेला हुआ है। अगर शेयर नंबर्स देखे जाएं तो जितना खो खो को लोग खेलते हैं उतना किसी भी खेल को नहीं खेलते। इसलिए 2032 में हम लोग ओलंपिक में होंगे, 2030 में हम लोग एशियन गेम में होंगे और जल्दी कॉमनवेल्थ गेम में होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
और बहरहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। विश्व स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कल प्लेऑफ में मेजबान हांगकांग चीन को 2-0 से हराकर पांचवा स्थान हासिल किया। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने अपने अंतिम मैच में फ्रांस पर 2-1 से जीत हासिल करने के बाद वो 7वें स्थान पर रही। हम सीधा चलते हैं मस्कट, जहां जूनियर महिला एशिया कप खेला जा रहा है। भारत का मुकाबला चीन से है। पूल मैच में चीन ने पराजित किया है भारत को, तो किस तरह का मुकाबला आप आग रही हैं? चीन भी एक महाशक्ति है, भारत भी एक महाशक्ति है एशिया में।
जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है अब तक टूर्नामेंट में, काफी उत्साहजनक जीत दर्ज की है और ये जितने खिलाड़ी हैं ये सब सीनियर टीम में प्रवेश की दावेदार है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चीन के सामने भारत का पलड़ा जरूर इस मैच में भारी रहने वाला है और एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम करेगी।
जी बिल्कुल, और भारतीय सीनियर टीम की अगर हम बात करें तो सीनियर टीम ने हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, हालांकि भारत रांची में, और उसके हालांकि भारतीय टीम जो है ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई करने के लिए नाकाम रही थी, लेकिन कोशिश भारतीय महिला टीम की ये कि वो पुरुष टीम के साथ ओलंपिक में शिरकत करे।
बिल्कुल कोशिश होगी और नया कोच है टीम के साथ जुड़े हैं। राजगीर में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था भारतीय टीम का और उस पेरिस वाले चैप्टर को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत की है नए सत्र में, तो उम्मीद यही करते हैं। और अभी हॉकी लीग आने वाली है जिसमें महिलाओं की भी लीग पहली बार हो रही है, तो यहां से काफी प्रतिभाएं भारत को मिलने की उम्मीद है।
जी बिल्कुल, और बहरहाल समय नहीं है आपसे इस पर और दूसरी खेल खबरों पर हम चर्चा जारी करें, जारी रखें माफ कीजिएगा। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी को। मोना, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।